इज़राइल की वजह से उनको ज़ुल्म व सितम का सामना करना पड़ा, अब चूंकि चंद नशिस्तें रह गई हैं लिहाजा वो बहस जो हम काफ़ी खोल चुके हैं, काफ़ी फैला चुके हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम कंक्लूजन की तरफ, समेटने की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि तो बहस को फैलाना एक काम होता है, फिर उसको समेटना भी एक काम होता है। हर तकरीर में, हर मकाले में ज़रूरी है कि आप बहस को फैलाएं पहले और उसके बाद एक नतीजे तक पहुँचें। बाद इंसान नतीजे तक नहीं पहुँच पाता, फिर वो आखिरी तकरीर में कहता है कि इस मौजू का हक अदा करना बहुत मुश्किल है, बहुत वसी मौजू है। तो जितना वक्त है उसके पास उसी हिसाब से उसको बहस को फैलाना चाहिए ताकि काबू में रहे, वरना तो मौजू सारे वसी होते हैं। तो देखिए, वक्त तक ये अर्ज कर चुका हूँ आपके सामने के अली अलैहिस्सलाम के फजाइल बहुत ज़्यादा हैं और इन फजाइल की वजह से उसे हसद किया गया अली से, औलाद अली से, अहले बैत अतहार से। कल मैंने कुछ शुजात पर बात की, शुजात हो या सखावत हो, अता बख्शिश हो, जब कोई कारनामा उनकी तरफ से जाहिर होता है तो खुदावंद आलम की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से उसकी एक रिकॉग्निशन होती है। जैसे कारनामा कर रहे बयान के मौला अली का कि वो मैदान में गए, एक ऐसे मौके पर गए कि जब कोई जाने को तैयार नहीं था तो उसकी रिकॉग्निशन हो गई कि हाँ कोई और जाने को तैयार नहीं, अली जा रहे हैं। जब उसकी रिकॉग्निशन होती है और उसके हवाले से कोई बात आती है सामने, खबर खुदा की तरफ से आए, खुदा के रसूल की तरफ से आए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये ज़र्बतु अली यौम अल खंदक, अब्दुल मुमिन इबादत इस्तक़लैन, तो फिर लोगों को एहसास होता है कि हर बार हर मरतबा इन्हीं के फ़ज़ाइल क्यों ज़ाहिर हो रहे। उसका जवाब यह है कि कारनामे भी उन्हीं के जरिए ज़ाहिर हो रहे हैं। अगर और लोगों के कारनामे सामने आएंगे उनके शान में भी जाहिर है, कुछ ना कुछ अल्लाह के रसूल बयान करेंगे। जब जनाब हमजा ने शहादत पेश की, दारिश शुजात दी, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, तो अल्लाह के रसूल ने उनको सैयदुश्शुहदा कहा। उस वक्त तक जितने भी शहीद हुए थे जंगे बदर और जंगे उहद में, उन तमाम शुहदा के सैयद सरदार जनाब हमजा है, उस वक्त वो सैयदुश्शुहदा थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी का अमल रायगा जाएगा, मगर वो अमल करके तो दिखाए। तो अता बख्शिश के मामले में भी इसी तरह है कि जब अता बख्शिश में वो कैफियत सामने आई कि मसलन अहले बैत अतहार ने, मौलाए कायनात ने, जनाब सैयदा ने, हसन हुसैन ने, तफसील नहीं बयान कर रहा मैं, आप सब जानते हैं कि अपने सामने की रोटी उठा के साहिल को दे दी, खुद भूखे रहे, खुद पानी से इफ्तार कर लिया, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन गुजर गए। हसन हुसैन जो अभी बीमारी से उठे थे नकाहत की वजह से, उनके चेहरे जर्द पड़ने लगे, पैगंबर तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि बच्चे कांप रहे हैं, उनके चेहरे जर्द पड़ गए, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। तो ये कुर्बानी, ये इशार है इस घराने की, तो खुदा की तरफ से रिकॉग्निशन हुई। सूरह दहर की आयत नाज़िल हुई, एक अमल है, उस अमल की वजह से कुरान की आयत नाज़िल हो रही है। तो ये अमल भी तो कैसा है, ये इशार भी तो कितना जबरदस्त है कि जिसका खुदावंद आलम इकरार कर रहा है, इन्नमा नुतअमुकुम लिवजहिल्लाह, कि हम तुम्हें खुदा की खातिर खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। इस आयत के टुकड़े के बारे में कहती है कि किसी वाक्य में आपको ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने अपनी जुबान से ये कहा हो कि इन नमन तुम ले वजिल्ला, हम तुम्हें खुदा की खातिर खिला रहे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बल्कि ये उनकी शान के मुताबिक भी नहीं कि जब वो किसी को अता बख्शिश करते थे तो एहसान नहीं जताते थे कि हम तुम्हें खुदा की खातिर खिला रहे हैं। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है इन नमन तुम ले वजिल्ला, ला मुरीद मिनकुम जज़ा वला शुकूरा, ना तुमसे कोई जजा चाहिए ना शुक्र गुजारी चाहिए। कि क्या है ये? दरअसल उनकी वो नीयत है जो उनके दिल में थी, उनकी जुबान से ये अल्फाज जाहिर नहीं हुए, लेकिन वो जो उनका इरादा था, जो उनकी नीयत दिल में थी, उस नीयत को खुदावंद आलम ने बयान किया। घराने का इशार है, इस घराने की कुर्बानी है, इस घराने की अता और बख्शिश है कि खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, खुद भूखे रहते हैं दूसरों को अता करते हैं, जबकि उनको खुद इस चीज की जरूरत है। तो एक अमल उनकी तरफ से जाहिर होता है तो खुदा की तरफ से फिर उसके रिकॉग्निशन होती है, और जब वो फजाइल जाहिर होते हैं तो आप लोगों को ये महसूस होता है कि इसी घराने के लिए क्यों आ रहा है, इन्हीं हस्तियों के लिए क्यों आ रहा है, इन्हीं के शान में क्यों आ रहा है, कोई और आ जाए इस मैदान में, कोई और ये काम अंजाम दे दे। मस्जिद में बहुत से लोग थे, साहिल ने आके सवाल किया, किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने अंगूठी दे दी, अली के शान में आ जाने लोग, कोई और दे देता कुछ, मौके तो थे ना। तो फजाइल और कमालात का इजहार हुआ और होता चला गया, और जैसे मैं शुरू से अर्ज कर रहा हूं, दो तरह के लोग सामने आते चले गए, यहां तक के अब सूरत हाल ये है कि एक इस्लामी माशरा मदीने में कायम हो गया है, इज्तिमाई कवानीन आ चुके हैं, एक इस्टैब्लिश हो गई एक सोसाइटी जिसको आज हम मदनी रियासत कहते हैं, एक रियासत वजूद में आ गई। वो अरब जो कबाइली निज़ाम में रहते थे, जो एक मरकजी सियासी निज़ाम से वाकिफ ही नहीं थे, इस खत्ते ज़मीन में हिजाज़ मुक़द्दस में एक मरकजी सियासी निज़ाम जिसका कंट्रोल, जिसकी सुपरविजन खुद अल्लाह के रसूल के हाथ में है, वो इस्टैब्लिश हो गया। तो एक हुकूमत कायम हो गई। अब जब हुकूमत कायम हो गई तो बहुत से लोगों की नज़रें उसके ऊपर थी कि हुकूमत इस्टैब्लिश हो रही है इस खत्ते में, और जितनी दीगर कुव्वतें थी पहले से, चाहे वो कबाइल हों या अहले किताब हों या मक्के सरदारान कुरैश हों मक्के के, उन सबको शिकस्त हो गई। पहले तो लोग आए कुफर का और शिर्क का झंडा लेकर इस्लाम का मुकाबला करने के लिए, एक नहीं दो नहीं मुसलसल कई जंगों में आए, लाओ लश्कर लेकर आए, तीर व तबर लेकर आए, तलवारें लेकर आए, घोड़े लेकर आए, लेकिन मुसलसल दलील होकर गए, यहाँ तक कि इस्लाम गालिब आ गया, इस्लाम बालादस्त हो गया, मदीने में भी, बालादा मक्के में भी, ताइफ में भी। तो वो लोग जो इस्लाम का मुकाबला कर करके थक गए, दलील हो गए, बिलाखिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील कर दी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस्लाम के अंदर दाखिल होके उसकी जड़ों को खोखला किया जाए, और उनमें से कुछ लोग मुसलमान हो गए, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, कलमा पढ़ लिया उन्होंने। लेकिन एक मजलिस में अर्ज कर चुका हूँ आपसे मैं कि उनके अंदर ये जुरत नहीं थी कि वो मैदान में आते मुकाबला कर, इसलिए वो खामोश रहे, मौके की तलाश में रहे, प्लानिंग करते रहे, बैकअप प्लानिंग करते रहे कि किस तरह इस्लाम पर हमला किया जाए। इधर अल्लाह उसके रसूल की अपनी एक प्लानिंग, मकर वो मकर अल्लाह, एक प्लानिंग उनकी है, एक प्लानिंग अल्लाह की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर।
अल्लाह की प्लानिंग ये है कि ये बादशाह जो कायम हुआ है इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद, ये इसी तरह चलता रहे। तो बादशाह उसी वक्त चलता रहेगा जब लीडरशिप चलती रहेगी। जिस क़यादत और रहबरियत ने इतनी ज़हमतों के बाद इस माशरे को, इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया है, वो लीडरशिप कंटिन्यू रहेगी तो सोसाइटी इन्हीं खतूत पर, इन्हीं वैल्यूज़ पर कंटिन्यू रहेगी। सीधी सी बात। लेकिन किसी इंसान को हमेशा तो नहीं रहना। अल्लाह के रसूल के बारे में भी कुरान करीम ने कह दिया है कि वो भी इस दुनिया से जाने वाले हैं। पैगम खुद भी इरशाद फरमा चुके हैं मुख्तलिफ अंदाज से। अल्लाह के रसूल ने कई ऐसे जुमले इरशाद फरमाए कि जिससे लोगों को ये अंदाज़ा होने लगा कि अब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब आप ज़्यादा अरसे हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। कि जो हजरतुल वदा में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की गई हज करने के लिए अल्लाह के रसूल के साथ, तो उसकी कई वजूहात हैं। एक तो यही है कि अल्लाह के रसूल का वो पहला हज है जो आखिरी हज भी साबित हुआ। इससे पहले आपने हज नहीं किया, इससे एक साल पहले ही हज वाजिब हुआ मुसलमानों पर। इससे पहले तो हज था ही नहीं, उमरा होता था तो उमरा के लिए अल्लाह के रसूल भी एक मरतबा तशरीफ लाए और फिर उमरा नहीं कर सके और सुलह हुदैबिया के बाद वापस चले गए। बाद में उमरतुल क़ज़ा करने के लिए आए, वो उमरा करके आप चले गए। फिर जब हज वाजिब हुआ तो पहला हज आपने नहीं किया। अब वक्त नहीं है, कोई एक वाक़ सामने आता है तो फौरन उसके पीछे एक फजाइल वाली कोई रिवायत याद आ जाती। तफसील नहीं बयान कर रहा, अगर आप खुद ही पहुँच जाएँ तो पहुँच जाएँ कि उसमें भी आपने किसी और को बज़ाहिर अमीर हज मुकर्रर किया लेकिन अल्लाह का हुक्म यह आया कि सूरह तौबा की आयतें नाज़िल हो गई और अल्लाह का हुक्म यह है कि आप खुद जाएँ या अपने ख़ास आदमी को भेजें सूरह तौबा के ऐलान के लिए। कारवान जा चुका था, कारवान निकल चुका था, अब क्या करें। अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म आया, फिर आप नहीं जा सकते थे, आपने फिर अपने ख़ास आदमी को बुलाया। क्या भाई ये अल्लाह का हुक्म है, सूरह तौबा की आयतें हैं, सख्त हुक्म है, वार्निंग है, मुशरिकीन को वार्न करना है, अल्टीमेटम देना है 4 महीने का मुशरिकीन को कि उसके बाद वो खाली कर दें मक्का और फिर भी खाली ना करें तो उनको कत्ल कर दिया जाए। इतनी सख्त वार्निंग तो वही दे सकता है जिसकी पेशानी शिर्क से खुद आलूदा ना हो, वरना मुशरिकीन कहेंगे कल तक तो तुम हमारे दरमियान थे, आज हम ही गले लगा रहे हो, तब क्या करें। तो फिर उसको भेजा कि जिनके चेहरे के बारे में मुसलमान कहते हैं करम अल्लाह वजह, अल्लाह का करम का चेहरा है वो। और अल्लाह का करम क्या है, उलमा ने कहा अल्लाह का करम इस चेहरे पर ये है कि ये कभी किसी बुत के आगे नहीं झुका। बाकी बड़े बड़े उनके चेहरे बुत के सामने झुक चुके हैं। तलवार पड़े एक मोहम्मद वाले में तो फिर सूरह तौबा की तिलावत जो है वो ऐलान मुशरिकीन को वार्निंग अली ने जाके दी। तो अल्लाह के रसूल ने एक सूरह, पूरा सूरह भी नहीं, उसके कुछ हिस्से इब्तदाई आयते हैं, उन आयतों की तिलावत के लिए भी किसी और पर एतबार नहीं कर सकते। अल्लाह का हुक्म ये कि नहीं, वो भी नहीं कहता हूँ। फिर उसके बाद के बहुत सारे मराहिल। तो हजरतुल वदा में लोगों की कसरत की एक वजह यह थी कि अल्लाह के रसूल कई ऐसे जुमले इरशाद फरमा चुके थे जिससे लोगों को ये अंदाज़ा होने लगा था कि अब आप हमारे दरमियान ज़्यादा से नहीं रहेंगे और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल का पहला हज था, वो इसलिए भी लोग गए और लोगों को ये एहसास था कि अब आप हमारे दरमियान ज़्यादा से शायद न रहें। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद पहुँच गई और हज भी हो गया। वापसी के रास्ते पे अगर सारा काम हो गया तो वापसी के रास्ते पे
खुदा का हुक्म आया या अय्युर रसूल बल्लिग मा अंज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि ऐ रसूल आपको हुक्म वो बात पहुँचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से पहले ही उतर चुकी।
और यही नहीं, उसके आगे और सख्त अल्फाज भी हैं, वइल्लम तफअल
फमा बल्लगत रिसालत, अगर आपने ये काम नहीं किया तो रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। इतना सख्त हुक्म,
ये काम अगर आपने नहीं किया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया।
रिसालत का काम करते हुए अभी आपको 22 साल हो रहे हैं, 22 साल
से जो आपने जहमतें की, मक्की जिंदगी देखें कितनी मुसीबतों वाली जिंदगी है, जिस पर रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, लहू लहान किया जा रहा है, आप पर गलादर डाली जा रही है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको कत्ल की कोशिश की जा रही है, क्या नहीं हुआ। फिर हिजरत, और हिजरत के बाद जंगे, उन जंगों के अंदर कितने अहम लोगों की शहादत, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी इस्लाम के दिफा में। फिर उसके बाद एक माशरा कायम हो रहा है जिस माशरे में सारे अहकाम आ रहे हैं, इज्तमाही कवानीन आ रहे हैं, सजाओं का निज़ाम आ रहा है, इस्लाम का एक जुडिशरी सिस्टम पूरा है, हुदूद और क़िसास और दियात और शराब हराम हो रही है, सूद हराम हो रहा है, विरासत का कानून आ रहा है, पर्दे का हुक्म आ रहा है, पूरा एक निज़ाम ज़िंदगी है। और 22 साल से अल्लाह के रसूल यही कर रहे हैं कि जो हुक्म खुदा का आ रहा है वो पहुँचा रहे हैं, और उसके बाद उसके निफास की कोशिशें कर रहे हैं। अब खुदा का हुक्म आया, वह इल्लम तफल फमा बल्लगत रिसालत, अगर ये काम आपने ना किया तो बुरा रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं है। कोई बहुत अहम काम है ना, ये कोई आम सी बात तो नहीं है, आम सी बात नहीं है। लोग कहते हैं मन कुन तो मौला और फाज अली मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका ही दोस्त है। किसने मिसाल दी कि एक साहब से यही बहस हो रही थी कि मौला के माना क्या है, दोस्त के हैं। तो एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, यार कहाँ हो, चलिए मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत अहम काम में मसरूफ हूँ। उन्होंने कहा फ़ौरन आ जाओ, जरा बहुत ज़रूरी काम है, चलिए मैं बहुत बिजी हूँ, आ जाओ बहुत ज़रूरी है यार, चलिए। पता नहीं किस तरह बेचारे चल के भाग दौड़ के पहुँचे वहाँ पर, चलिए क्या हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई। कहा नहीं, मैं असल में तुझे ये कहने वाला था कि तुम मेरे बहुत अजीज दोस्त हो। चलिए यही कहने के लिए बुलाया मुझे, मैं बहुत बिजी था यार, इतनी मुश्किल से पहुंचा हूँ। तो कहा यही तो अल्लाह के रसूल ने किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। ये पूरा कारवां जो जा रहा था, कहा आगे वाले को रोक दो, पीछे वालों का इंतजार करो, और फलाने शतर का मेंबर तैयार करो, और इतनी सब गर्मी में धूप में चिलचिलाती धूप, साहब है कराम की कैफियत ये थी कि अबा का एक पल्लू सर पर डालते थे, दूसरा पाँव के नीचे डालते थे। और उसके बाद जो आपने ऐलान किया तो ये ऐलान किया, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका भी दोस्त हूँ, तो बाकी सारे तरह दोस्त थे, पैगम्बर के दुश्मन कौन था वहाँ, तो मतलब कुछ और मतलब है ना इसका, इतनी सिंपल बात नहीं है। तो वो बात क्या है, वो बात यही है कि वो इस्लामी माशरा जो आपने 22 साल में इस्टेब्लिश किया, अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं एज इट इज ऑन द सेम वैल्यूज, तो आपको लीडरशिप को भी इन्हीं खतूत पर लेके जाना है, वरना नहीं रहेगा। लिहाजा उसका ऐलान कीजिए, और अगर आपने ये ऐलान ना किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई काम नहीं किया, बल्कि अगर आपने ये ऐलान ना किया तो वो जो 22 साल तक आपने जहमतें उठाई हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, लॉजिकली इतनी जहमतें आपकी रायगा हो जाएंगी। इसलिए ये ऐलान करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐलान मुतअद्दिद मौके पर कर चुके थे मुख्तलिफ अंदाज से, वो तो हम कुछ ना कुछ बयान कर रहे हैं, लेकिन ये जो फाइनल ऐलान है, ऐलान गदीर, ये उन सब पर भारी है, ये उन तमाम ऐलानात पर भारी है।
قاضی بنارسی نے کہا تھا کہ دشت میں پیغمبر اسلام کو کیا ہو گیا، دشت میں پیغمبر اسلام کو کیا ہو گیا، بات وہ کہہ دی کہ قاضم حشر برپا ہو گیا، اور دعویٰ داران محبت دیکھ کر منہ رہ گئے، جس کو دعویٰ تھا غلامی کا وہ مولا ہو گیا، جس کو غلامی کا دعویٰ تھا وہ مولا ہو گیا۔ تو اب جو یہ اعلان ہو گیا، یہ اعلان اس مائنڈ سیٹ کے لیے بہت سخت ہے، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے مولا کا معنی وہ ضرور سمجھ گئے کہ اس کا کیا معنی ہے، کس چیز کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ تو حارث فہری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہ حارث فہری کا واقعہ میدان غدیر کا ہے نہیں، ویسے ذرا اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں کبھی، یعنی میدان غدیر میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، یہ واقعہ پیش آیا مدینہ میں جب پیغمبر مدینہ چلے گئے، بہرحال یہاں پیش آیا وہاں پیش آیا فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے پہلے اپنے رسالت کا اعلان کیا ہم نے مان لیا، آپ نے یہ حکم دیا وہ حکم دیا وہ سارا ہم نے مان لیا، اب آپ جاتے جاتے اپنے بھائی کو اپنی جگہ ہم پر معاذ اللہ مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی طرف سے کیا، یعنی اگر وہ واقعی مسلمان تھا تو ایک مسلمان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں کب وما ینطق عن الہوا، کہ پیغمبر تو اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، الا ان ہوا وحی نہیں ہوا، ان ہوا الا وحی نہیں ہوا، جب تک کہ وحی نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے اعلان کر دے، جبکہ قرآن کی آیت بھی نازل ہو چکی ہے، بلغ آیا بلغ، لیکن اس کے باوجود یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا یا خدا کی طرف سے، آپ نے خدا کی طرف سے اعلان کیا۔ اچھا اب دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں بار الہ اگر یہ واقعی تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل ہو، یعنی جو قرآن کیا رہتے سائل سائلون عذاب الواقع، یہ وہ سائل ہے جس نے خود طلب کیا ہے عذاب کو، جس نے خود طلب کیا عذاب کو کہ بار الہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو عذاب نازل کر میرے اوپر۔ اور اسی وقت آسمان میں کوئی ایسے آثار نہیں تھے، کوئی بادل نہیں تھے کہ مثلا اولے گر جاتے یا کوئی ایسی چیز، ایک پتھر آسمان سے آیا اس کے سر پہ گرا اور جسم کو پار کرتا ہوا نیچے چلا گیا، اور وہ ڈھیر ہو گیا، وہ صلوات پڑھے محمد والے، تو یہ جو جملہ وہ کہہ رہا ہے وہ تو چلے پھر نار ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ اس اعلان غدیر کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس اعلان غدیر کو ایک طبقہ ایسا تھا جو اس طرح دیکھتا تھا کہ معاذ اللہ آپ نے جاتے جاتے اپنی سیٹ پر اپنے بھائی کو نومینیٹ کر دیا، بھائی کو کزن کو داماد کو، جو لوگ اس طرح سوچتے تھے آپ ان کے ایمان کے بارے میں غور کریں کہ ان کا ایمان کس لیول کا تھا۔ یہاں تو لوگوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمیں رسالت پہ اتنا شک ہوا، رسالت پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسالت پر جو شک ہوا اتنا پھر کبھی نہیں ہوا، ہوتا رہا لیکن اتنا نہیں ہوا، سب سے زیادہ شک صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، اور وہاں پہ بھی یہی سوال کسی نے کیا، وہاں پر بھی یہی سوال کیا گیا تھا پیغمبر سے کہ آپ نے جو صلح کی ہے اپنی طرف سے کی ہے خدا کی طرف سے، آپ نے خدا کی طرف سے کی، یہ سوال کتنا عجیب ہے کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں، جس نبی کے کہنے پہ
قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں, جس نبی کے کہنے پہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں, حیات بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں, اس نبی کو آپ جا کر یہ کہ آپ نے یہ بات جو کی ہے اپنی طرف سے کی ہے یا خدا کی طرف سے کی ہے؟ اتنی عجیب بات ہے, لیکن یہ بات لوگوں نے کی, ہم ریکارڈ ہے کہ اپنی طرف سے فیصلہ کیا آپ نے یا خدا کی طرف سے کیا. تو اللہ کے رسول کیا اپنی طرف سے فیصلہ کریں گے؟ اگر وہ اپنی طرف سے بھی کریں گے تو وہ خدا کی طرف سے ہوگا. یہاں تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے پتھر مارا, آپ نے کنکری پھینکی, یہ آپ نے نہیں پھینکی, خدا نے پھینکی. جو پیغمبر کا عمل ہے اس کو بھی خدا نے اپنی طرف منسوخ کیا. تو اتنا بڑا ڈیسیجن, اتنا بڑا فیصلہ تھا, کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کرے؟ تو ایک طبقہ ایسا تھا, اس نے یہ دیکھا کہ اعلان غدیر کو تو ہم روک نہیں سکے, اعلان تو ہو گیا خدا کے حکم سے, شاید ان کو توقع نہیں ہوگی کہ اب جب کہ حجت الوداع کا اختتام ہے, حج پورا ہو گیا, مناسک پورے ہو گئے, اب تو گھر جانے کی جلدی ہے, گھر جانے پر شاپنگ کرنا اور جانا آخری مرحلے میں یہی کام رہ جاتا ہے. تو اب جب گھر کی طرف جا رہے ہیں ایک دم راستے میں روک لیا جائے گا, اور وہاں پہ بھی کوئی تقریر ہو سکتی ہے, کوئی خطبہ ہو سکتا ہے, صحرا میں بھی کوئی ممبر بن سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہو سکتا ہے. یہ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی بات, لیکن یہ ہو گیا ظاہر ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اعلان تو ہو گیا, ہم تو نہیں رکھ سکے, اب اس پر عمل درآمد نہ ہو. یہاں سے ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے کہ اعلان غدیر پر عمل درآمد نہ ہونے پائے. یہ بات اللہ کے رسول بھی محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو اس اعلان پر عمل درآمد نہیں ہونے دینا چاہتی. اور یہ جو آخری سال کے جو واقعات ہیں کئی, ان سب کی کڑیوں کو آپ ملائیں تو آپ کا اندازہ ہوگا. مثلا پیغمبر کے کمرے میں شور ہوتا ہے اور آپ بیدار ہوتے ہیں, جبکہ آپ کی طبیعت ناساز تھی, اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کو حجرے میں شور کرتے ہو, تم لوگ تم نہیں پڑھا قرآن کریم نے منع کیا, لا تفو وسط تم واپس ہوتے نبی بولا تھا جھرو لہو بالقول فجہر بعض تم لباس انتا بتا اعمال حکوم انتم لا تشکرون, کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو, ان سے تیز آواز میں بات نہ کرو, تو تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا لاؤ کاغذ اور قلم ایسی چیز میں لکھ کے دے دو. پھر وہاں مزاحمت ہوئی, کس نے کہا دے دو, کس نے کہا نہیں دو, دو گروہ بن گئے. نہیں دینے والے زیادہ قوی تھے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو کاغذ اور قلم کے منہ میں ہے, اور لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا دے دیتے, یہ لیں, لکھنا ہی نہیں آتا آپ کو تو رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دو, وہ جانتے تھے کہ لکھ سکتے ہیں, یہ دے دیتے, نہیں دیا. یہاں تک کہ آپ نے بتا دیا سب کو, قومو عنی, اٹھ جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ. تو یہ واقعہ ہو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو لکھنا تھا تو بعد میں لکھ دیتے, چلے اس وقت شور شرابہ ہو گیا نا, بعد میں لکھ کے دے دیتے, بعد میں کیوں نہیں لکھ کے دیا آپ نے؟ بھائی جب اللہ کے رسول یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی موجودگی میں کچھ لوگ ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پر ابھی بیماریوں کا غلبہ ہے, لفظ ہزیان بھی بہت کتابوں کے اندر آیا ہے, لیکن جن کتابوں میں لفظ ہزیان نہیں بھی آیا ہے وہاں جو دوسرے الفاظ آئے ہیں ان کا معنی یہی ہے کہ ابھی آپ کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے. तो जब मुंह के सामने इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, अब लिख के दे रहे हैं, फिर भी वही बात करेंगे, बात तो वही हो गया। तो अंदाजा हो रहा है कि अब मामला जो है वो किसी और समझ में जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरहदों पे रोमी लश्कर जो है मुसलसल छेड़छाड़ में मसरूफ है। रोमियों से एक मुकाबला जंगे मुत्ता में हुआ था जिसमें मुसलमानों को नुकसान पहुंच चुका था। दूसरा मुकाबला करने के लिए आप जंगे तबुक में गए थे, वो जंग हुई नहीं, वापस आ गए। अब आपकी ख्वाहिश है कि रोमियों से भी एक मरतबा फाइनल बैटल हो जाए, आपकी ख्वाहिश है कि हो जाए मुकाबला। आपने एक लश्कर तैयार किया, एक लश्कर तैयार किया, उस लश्कर का सिपाही सरार किसको बनाया? 19 साल उसामा बिन जैद, जिसको लश्कर उसामा या जैश उसामा कहा जाता है। 19 साल उसामा बिन जैद को, जो जैद इब्न हारसा के बेटे थे, उस यंग स्मार्ट जवान को आपने, नौजवान को, तो आपने उस लश्कर का सिपाही सलार बनाया कि जो रोमन एम्पायर सुपर पावर से मुकाबला करने के लिए जा रहा था, और उस लश्कर में सारे सीनियर लोगों को शामिल कर दिया, तुम भी जाओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ। लोगों को फील हुआ कि ये क्या हो रहा है, और ये जिस तरह आजकल कहते हैं ना हमारे यहाँ के, ये कल का बच्चा है, हमारे गुरुओं को खिलाया हुआ, ये लीड करेगा हम। जैसे कल मैं आपके सामने बयान कर रहा था तालूत के लिए, लोगों ने कहा ये तालूत, इसके पास तो पैसे ही नहीं, पैसे तो हमारे पास हैं, हम लीड करेंगे, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो जब अल्लाह के रसूल के इल्म में ये बात आई कि लोगों को उसामा की लीडरशिप पे एतराज़ है, तो आप सख्त नाराज़ हुए, बीमारी की हालत में उठ कर गए, मस्जिद आपकी आवाज़ ज़मीन में खुद खींच रही थी, मिंबर पर जाके आपने इरशाद फरमाया कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम लोगों को उसामा की लीडरशिप पे इतराज़ है। कल जब मैंने इसके बाप को बनाया था, जब भी कुछ लोगों ने इतराज़ किया था, उससे पहले ज़ैद इब्न हारसा को जब बनाया था कुछ लोगों को, उस पर भी इतराज़ था, होगा यकीन जब अल्लाह के रसूल कह रहे, और आज जब मैंने उसके बेटे को बनाया फिर कुछ लोगों को इतराज़ है। हालांकि इसका बाप भी अपने वक्त में मुनासिब तरीन आदमी था इस काम के लिए, और ये बेटा भी इस काम के लिए मोस्ट डिजर्विंग है। इसी के साथ जाओ, और जो जाने से इनकार करे उस पर अल्लाह उसके रसूल की लानत होगी। सब वार्निंग आ गई। अब लोगों ने कहा अरे हम तो ऐसी मशवरा दे रहे थे किसी सीनियर को बना देते, लेकिन ठीक है आपने बना दिया, चलो 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 चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं करते करते मदीने से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद कहने लगे कि अरे अभी सुना है हुजूर की तबीयत ज़रा नासाज हो गई, ज़रा रुको हम होके आते हैं देख के आते हैं। गए नहीं, मदीने के बाहर जाके लश्कर बाहर चला गया, कुछ लोग अंदर आ गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो भी ये महसूस कर रहे थे कि इस वक्त जो एक अहम मौका है, जिसको वो भी अपनी दूरबीन निगाहों से देख रहे होंगे, अंदाजा लगा रहे होंगे, इस मौके पर हमें इस सेंटर ऑफ पावर से दूर किया जा रहा है कि जाके रोमियों से मुकाबला करो, ताकि कोई ऐसा मौका आ जाए तो ट्रांसफर ऑफ पावर स्मूथली हो जाए। वो भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे इस चांस को मिस करना, क्योंकि प्लानिंग हो रही थी कुछ और। मैंने एक तकरीर में आपके सामने अर्ज किया है कि यहूदियों ने बहुत साजिशें की, लेकिन वो सब की सब किताबों में लिखी भी नहीं, ये खास बात है। ऐसी ऐसी प्लानिंग, ऐसी ऐसी साजिशें यहूदियों की, लेकिन वो सब किताबों में नहीं आई। तो यहूदी अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, और वो अपने साथ किन किन लोगों को मिलाया उन्होंने, तो कुछ लोग नहीं गए और वो वापस अंदर आ गए। ये जो लोग कहते हैं ना नमाज पढ़ाई पढ़ाई है वो, ये सब इसी जमाने की बातें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो अंदर क्या कर रहे थे, उनका नाम तो उस लिस्ट में था जो मदीने से बाहर होना चाहिए, अंदर कैसे आए, किसकी इजाजत से आए, क्यों आए। लेकिन उस पर उसके बाद वो लश्कर नहीं गया यहां तक कि अल्लाह के रसूल की रिहलत हो गई। तो ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया, वो लश्कर पहली खिलाफत में फिर भेजा गया। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि रूमियों से मुकाबला चूंकि हुजूर की ख्वाहिश थी इसलिए लश्कर जाएगा, लश्कर तैयार करो दोबारा। किसी ने कहा कि उसामा को रिप्लेस कर देते हैं, ये यंग हैं इनएक्सपीरियंस्ड हैं। वो सब नाराज हुए, उन्होंने कहा कैसे, मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसको हुजूर ने बना दिया उसको मैं तब्दील कर सकता हूँ। फिर नहीं, ये लश्कर जाएगा और उसामा ही की क़यादत में जाएगा। देखिए कितना जज्बा है। लेकिन ये भूल गए कि हुजूर ने किसी को गदीर में भी बनाया था, हुजूर ने सिर्फ लश्कर उसामा तश्कील नहीं दिया था, कुछ ऐलान गदीर में भी किया था। दूसरी बात ये हुई कि लश्कर गया उसामा ही की क़यादत में और लश्कर कामयाब हो क्या आया, अल्लाह के रसूल का इंतखाब यूं ही नहीं था, लश्कर गया और लश्कर कामयाब हो गया। तो लश्कर तो कामयाब होकर आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे सीनियर लोग जिनके पास भारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिनकी वजह से वो नहीं जा सके, जिनका नाम उस लश्कर में था लेकिन भारी इंतजामी जिम्मेदारियों के सबब वो नहीं गए। अब मैं दोबारा वो जुमला दोहराना नहीं चाहता कि हुजूर ने क्या फरमाया था नहीं जाने वालों की सलावात पढ़े मोहम्मद तो हुजूर की रहलत हो गई। अब जब रहलत हो गई हुजूर की, एकदम वो जो प्लानिंग बनी हुई थी उस पर अमल दरामद शुरू हो गई। ये वाक़ियात जो बज़ाहिर आपको तारीख में ऐसा लगता है कि अचानक ही वक़ूअ पज़ीर हो गए, बल्कि एक साहब का जुमला भी है बुखारी में भी है कि उनकी बैत तो जल्दबाजी में हुई, खुदा ने हमें उसके शर से बचा लिया। तो क्या वाकई जल्दबाजी में हुई, क्या सकीफा की मीटिंग यूँ ही हो गई अचानक। बनू साइदा के जो लोग थे तो अंसार थे ना, वो तो अंसारी थे और साद इब्न उबादा को बनाना चाह रहे थे। वो जो साद इब्न उबादा को बनाना चाह रहे थे, वो साद इब्न उबादा पहले से उनके लीडर थे। औसर हजरत दो बड़े कबीले थे ना मदीने के, तो बनू साइदा जो है वो हजरत कबीले की एक ब्रांच है। उनके एल्डर्स की मीटिंग थी, सकीफा कहते हैं एल्डर्स, उनके एल्डर्स की मीटिंग थी। उस पर उन्होंने कहा कि साद इब्न उबादा तो हमारे पहले से लीडर है, तो हुजूर से हमारा एक एग्रीमेंट था कि हुजूर हमारे लीडर होंगे, अब जब वो दुनिया में नहीं रहे ये हमारे लीडर हो गए, सबके लीडर। ये इत्तला कहीं बाहर निकल के आ गई और अबू बुरैदा अपने जर्रा के पास पहुंची, उन्होंने आपको यहाँ बताया, कान में एक साहब को उन्होंने दूसरों को बताया, तीन आदमी निकल के वहाँ चले गए, चौथे के कान में ही बता देते। जब आपने एक को बताया दूसरे को बताया एक और को भी बता लेते, उनको कानों कान खबर नहीं हुई और खामोशी से कुछ लोग निकल के चले भी गए। फिर वहां डिबेट शुरू हुई, वो डिबेट आप पढ़े जाके किताबों में, बल्कि बुखारी में भी इस डिबेट का एक वाक्यात काफ़ी तफसील के साथ है, जिसमें ये जुमला जो उन्होंने आपके सामने बयान किया तो उनकी बैठ जल्दबाजी में हुई। इब्ने हिशाम ने, इब्ने इसहाक ने
उस जमाने के हालात को लिखा है, पैगम्बर के हिजरत के बाद सकीफा के वाक़यात को लिखा है कि वो तू तू मैं हुई की तलवार निकलने वाली थी। तो बहरहाल वहां पर मेरा आखिर बैत हो गई और अंसार जो थे अंसार मदीना वो ये डिबेट हार गए। बल्कि हुआ ये कि अंसार का जो इत्तेहाद था उस इत्तेहाद में फूट पड़ गई और उसका सबब भी उन्हीं के एक साथी थे कि जो कबीले औस से ताल्लुक रखते थे। औस और खज़रज के दरमियान इख्तलाफात चूंकि इस्लाम से पहले थे जिसको इस्लाम ने आके ख़त्म किया। कुरान ने कहा कुन तुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, खुदा ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। लेकिन कबायली असबियत जिस तरह के दीगर मकामात पर बाद में जाहिर होना शुरू हो गई, जब अल्लाह के रसूल नहीं रहे तो इनके दरमियान एक कैफियत तो थी ना, वो क्यों क्यों पसंद करते हैं कि हमारे पास कोई ऊपर कोई खजरज का कबीले का शख्स जो है हाकिम हो। तो ज़ाहिर इब्न साबित वो पहले शख्स हैं कि जिनका ताल्लुक कबीले औस से था और वो उस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग तो खजरजियों की थी लेकिन चंद कबीले औस के लोग वहाँ मौजूद थे, वन ऑफ देम वाज ज़ाहिर इब्न साबित। सबसे पहले उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सही तो कह रही है, तुम लोग क्यों इसरार कर रहे हो, पैगंबर अकरम के बाद ये लीडरशिप मुहाजिर के हाथ में होना चाहिए, अंसार के हाथ में नहीं होना चाहिए। मैं तारीफ करता हूँ, अब जब उन्हीं के आदमी ने इख्तलाफ कर लिया तो कुछ लोग उनके हमने और हो गए। बहरहाल वहाँ पर डिबेट अंसार हार गए और उसके बाद कुछ लोग फिर बैत बैत हो गई, फिर बाद में आके मस्जिद में बैत हो गई। एक दिलचस्प बात अर्ज करूँ कि जब अली अलैहिस्सलाम को यह खबर हुई कि सकीफा में क्या डिबेट हुई तो आपने पूछा कि तुम लोगों ने वो डिबेट किस तरह जीती। तो उन्होंने कहा कि ये हुआ, उन्होंने ये कहा। एक मौके पर तो ऐसा भी हुआ कि मिन्ना अमीर और बिल्कुल अमीर, एक हम बना लेते हैं तुम बना लेते बना लो वगैरह वगैरह। बहरहाल फिर तो रुतु मेमे हो गई, शोर शराबा काम हुआ और फिर ये हुआ वो अच्छी। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोगों ने यह आर्गूमेंट क्यों नहीं पेश किया कि पैगंबर ने महाजरीन से कहा है कि अपने अनसार भाइयों का ख्याल रखो। ख्याल रखना तो उन्होंने क्या किया, इससे क्या चीज़ साबित होती। अली अलैहिस्सलाम बता रहे पॉइंट दे रहे हैं उनको, कहा कि ये क्यों नहीं कहा तुम लोगों ने, तो उन्होंने इससे क्या साबित होता है। आपने फरमाया देखो अगर तो पैगंबर के बाद अंसार के पास लीडरशिप होती तो अल्लाह के रसूल अंसार को नसीहत करते कि अपने महाजिर भाइयों का ख्याल रखना, लेकिन अल्लाह के रसूल महाजरीन को नसीहत करके गए हैं कि अपने अंसार भाइयों का ख्याल रखना, इसलिए आपने ये नसीहत की। यानी डिबेट का एक अहम नुकता, एक आर्गुमेंट, एक दलील अली अलैहिस्सलाम दे रहे हैं कि तुमने ये क्यों नहीं उठाया जबकि डिबेट तो हो गई। उसके बाद फरमाया, बाद में उन्होंने ख्याल आया कि बात तो सही है, ये आर्गुमेंट भी दे सकते थे हम वहाँ पर, लेकिन बात तो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आपने फरमाया कि तुम लोगों ने उस दरख्त को तो ले लिया उसके फल को ज़ाया कर दिया। यानी अल्लाह के रसूल ने अगर ये फरमाया था हमारे लिए फरमाया था ना, हम उस शजरे तैयबा के फल हैं, तुमने वो डिबेट जीत तो ली लेकिन उसके फल को ज़ाया कर दिया कि हमारे खिलाफ ही बात चली गई। तो देखिए इस तरह कुछ लोगों ने किया ये कि गदीर में जो ऐलान हुआ उस ऐलान पर अमल दरामद से रोक दिया और अली अलैहिस्सलाम कफन दफन में लगे रहे, या सकीफा में सारा वाकया हुआ, मस्जिद में लोग आ गए, आम ऐलान कर दिया गया, लोग बैत कर लें। तबरी ने लिखा है कि कारवान आया हुआ था, तिजारती कारवान, वहाँ जाकर किसने ऐलान किया कि तुम सब जाकर बैत कर लो, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। पूरा कारवान आ गया, उन्होंने बैठ कर ली।
उसके बाद सब लोग जब आए पैगंबर के जनाजे में, तो जनाजा तैयार हो चुका था, हुजरी में रख दिया गया था, नमाज हो चुकी थी। आज तक मुसलमानों को नहीं पता कि अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा किसने पढ़ी, बल्कि किताबों में लिखा हुआ ही नहीं है किसने पढ़ा। यानी ये भी नहीं लिखा हुआ है कि हुजूर की नमाज जनाजा हुई, नमाज जनाजा हुई नहीं। फिर क्या हुआ, हुजरे में जनाजा रखा हुआ था, हुजरा बहुत छोटा था, कुछ लोग दरवाजे से दाखिल होते थे और सलावात पढ़ते थे। सलावात सलात सलात का मतलब सलावात भी है, और बाहर निकल जाते थे। अब क्या इस तरह होता था कि कुछ लोग आते थे नमाज पढ़ते थे निकलते थे? नहीं, जरूर पढ़ते थे निकल जाते, कोई नमाज ही नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि नमाज हो चुकी थी, उस नमाज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इस तरह पैगंबर की तस्वीर हो गई, और उसके बाद ऐलान हो गया। अब यह जो मौका आया, यहां से अली अलैहिस्सलाम पर अब तक तो वो चीजें जो दिल में थी, अब वो अमली तौर पर सामने आना शुरू हो गया। दो जुमले सिर्फ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सलावात पढ़ने एक मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्न अबिल हदीद मोतजली, जिनकी शर्ह नहजुल बलागा है, मोतजली शिया नहीं, वो कहते हैं इन्नहु फकीब यौम सकीफा तअल्लम व तजल्ल, कि अली अलैहिस्सलाम सकीफा के बाद जुल्म व सितम पर शिकायत करती हैं, बयान करते हैं अपने जुल्म को, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को। वअन्नहु क़ाल, और फरमाया वह यशीरु इलल क़ब्र, ये कौन सा मौका है? ये वो मौका है कि जब अली से बिल जबर बैत लेने की कोशिश की जा रही, और जनाब सिकेला के घर पे लोग आए और उन्होंने कहा कि अली को बाहर निकालो और नहीं इस घर को हम आग लगा देंगे। अब वो सारा वाक्य पेश आया, आग लगा दी गई, लोग घर में दाखिल हुए, शहजादी जख्मी हुई, और वो अली को ले जाने में कामयाब हुए। तो जब वो ले के जा रहे थे, इब्न अबी हदीद लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम ने वह यशीरु इलल क़ब्र, क्या आपने पैगंबर की कब्र की तरफ इशारा किया और फरमाया यब्न उम इन्नल क़ौम इस्तज़अफूनी व कादु यक्तुलूननी। ये जो हजरत हारून का जुमला कुरान करीम में सूरह आराफ में, वो आपने इशारा फरमाया पैगंबर को मुखातिब करके कि ऐ हमारे चचाजाद, वो भी चचाजाद थे, ऐ मेरे माजाए, उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी कौम है, इस कौम ने मुझे कमज़ोर कर दिया। इन्नल कौम इस्तज़अफूनी व कादु यक्तुलूननी, और ये तो मुझे कत्ल करना चाहती हैं। ये आयत पढ़ी आपने, व इन्नहु क़ाल, और उसके बाद फरमाया वा जाफरा वला जाफर अली, काश आज जाफर होते, लेकिन आज जाफर तो नहीं है। वला जाफर अली अलयौम वा हमजता वला हमजत अली अलयौम, काश आज हमजा होते, लेकिन हमजा तो नहीं है। जाफर को याद कर रहे हैं, हमजा को याद कर रहे हैं, अपने भाई जाफर, जाफर तैयार, एक भाई मौजूद है अकील, लेकिन जो बात जाफर में थी वो अकील में नहीं थी। हमजा को याद कर रहे हैं, अपने चचा को, एक चचा मौजूद है अब्बास, अब्बास, लेकिन अब्बास में वो बात नहीं है जो हमजा में। जो भी कह रहे हैं काश आज जाफर होते, लेकिन जाफर तो नहीं है, काश आज हमजा होते, लेकिन हमजा तो नहीं है। क्या होता जाफर होते और हमजा होते।
बाद लोगों ने इस जुमले पर तबसरा किया है
और उन्होंने कहा है कि अगर जाफर और हमजा होते तो पहली बात तो यह कि किसी की मजाल नहीं थी कि अली के साथ और अली के घर वालों के साथ ये सलूक करता, और दूसरी बात यह कि अगर ये दोनों होते तो यकीनन तलवार निकालते और मुकाबला करते, और ऐसा नहीं होता। लेकिन अब क्या है दूसरा जुमला, इसी पर आज की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, वक्त काफी हो गया। जो आपने खुतबे शकशकिया में इरशाद फरमाया, खुतबे शकशकिया कि जब आपसे पूछा गया इस खिलाफत के हवाले से, तो जो खुतबा आपने इरशाद फरमाया तीसरा खुतबा है, उसमें उसके इब्तिदा में फरमाते कि अमा वल्लाही लकद तकस्समहा इब्न अबी कहाफा व अन्नहु लयअलम इन महल्ली मिन्हा महल्लल कुतुब इब्न रहा। ये खुदा की कसम, फुला ने खिलाफत की कमीज को पहन लिया जबकि वो जानता था कि मेरी हैसियत मेरा मकाम वो है जो चक्की के अंदर कील की होती है। चक्की के दरमियान में जो कील होती है एक्सल पाइवट, मेरा रोल वो है जो एक पाइवटल रोल होता है। इमाम का किरदार वो होता है कि चक्की के जो ये पार्ट है ये उस वक्त काम करेंगे फंक्शन करेंगे जब उनके दरमियान जो कील है वो बैलेंस हो। तो फरमाया वो जानता था इन्नहु लयअलम अन्न महल्ल मिन्हा महल्ल कुतुब मिन रहा, लेकिन मैं क्या करूं, वो शख्स क्या करे कि जिसके साथ साथी ना हो, उसके अनसार आवाज ना हो, जिसके पर काट दिए जाए, जिसके दस्त बाजू खत्म हो जाए। पर आई तो अन्न सब्र अलाजा पर सबर को, बस मैंने देखा कि सब्र करने ही में आफियत है तो मैंने सब्र किया। वकील आई ने कदा वकी हल्के शजा, मेरी आंखों में कांटा चुभ रहा था, हलक में हड्डी फंसी हुई थी। ये कैफियत, ये उस गम की कैफियत को बयान कर रहे हैं कि मेरी कैफियत ये थी जैसे आंख में कांटा पड़ा हुआ हो और गले में हड्डी फंसी हुई हो। अरा तुरासी महबा, मैं देख रहा था मेरी मीरास लुट रही थी। पूरा खुतबा है, मैंने किसी को जुमले आपके सामने बयान की, पूरा खुतबा है खुतबा शख्स। और इब्ने अब्बास ने थोड़ा सा इंटरेक्ट कर दिया, रोक दिया, फिर आप रुक गए किसी वजह से, फिर कहा कि दोबारा इरशाद फरमाइए, वहीं से दोबारा कंटिन्यू कीजिए। अब ठीक नहीं, ये शकशकिया था कि दोबारा नहीं हो सकता। अफसोस करते हैं कि मैंने क्यों रोका, काश मैंने अली को कहने दिया होता बुरी बात करते वो, लेकिन आपने बुरी बात नहीं। यहाँ से वो मसायब शुरू हुए, बाकी बातें इंशाल्लाह कल परसों करेंगे कि जितना जिस कदर अजमत इस घराने की है उसी कदर मुसीबतों का सामना करना। पैगंबर की जिंदगी में तो किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल की आँख बंद हुई, अभी आपका कफन मैला भी नहीं हुआ कि लोग इस घर में आए उस दरवाजे पर। रिवायत में है कि जब आयत तस्वीर नाजिल हुई तो उसके बाद 6 महीने तक अल्लाह के रसूल दरवाजे से सैयदा पे आके अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा कह के सलाम किया करते हैं 6 महीने तक। या रसूलल्लाह, एक दिन बहुत है, 2 दिन बहुत है, 1 हफ्ता बहुत है, 2 हफ्ते। तो आप फरमाएंगे नहीं, इस घर की अजमत को, इस दरवाजे की अजमत को बताना चाह रहा हूँ। तो जिस दरवाजे की अजमत को अल्लाह के रसूल बता कर गए, उस दरवाजे पर मुसलमान आग और लकड़ियाँ लेकर आ गए और आके कहते हैं कि इस घर को हम इसके मकीनों के साथ जला देंगे। और फिर यही आग दोबारा आपको करबला में नजर आएगी, यही आग करबला में नजर आएगी। आज हसन की उस यतीम पे तस्करा करना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के की औलाद के बारे में मुख्तलिफ रवायतें हैं, करबला में उनकी कितनी औलादें थी, कितनी शहीद हुई, उनमें भी मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत के मुताबिक 7 बेटे आपके करबला में थे जिनमें से 6 शहीद हुए,
कुछ लोगों ने कम भी बताया, 6 शहीद हुए। हम तो एक का तस्करा करते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक दो जुमले आखिर में दूसरे फर्जन पे भी कर लूँ, लेकिन हम तो एक का तस्करा करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल कर्बला में ख़त्म हो गई। वो तो हसन मुसन्ना बच गए इत्तफाक से, जख्मी हो गए थे, बाद में इलाज मांजा हुआ, सही हो गए, तो इमाम हसन की नस्ल उनसे चली, वरना इमाम हसन की पूरी औलाद कर्बला में शहीद। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहादत के करीब पहुंच रहे थे और आपके कलेजे के टुकड़े तश्त में आए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े थे, एक मरतबा मामा सर से उतारा और रोने लगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रो रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत को देख के, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, तारीखी जुमला, जुमला सुना हुआ होगा आपको, लेकिन मुमकिन हमारे बाद बच्चों को ना पता हो कि जुमला इमाम हसन का है कि शहादत के वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू देखा ना इमाम हसन ने, तो एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया ला यौमक यौमक या अबा अब्दुल्ला, कि मेरे भाई हुसैन आप मेरी मुसीबत पे आंसू बहा रहे हैं, अरे आपकी मुसीबत की तरह तो किसी की मुसीबत नहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम याद फरमा रहे हैं कि भाई आपकी मुसीबत की तरह तो किसी की मुसीबत नहीं होगी। और वो वक्त कर्बला में आन पहुंचा कि जब हुसैन मुसीबतों में घिर गए हैं, अब क्या कहत यह है कि नन्हे नन्हे बच्चे आ रहे हैं और इसने जिहाद तलब कर रहे हैं, उसी में हसन का यतीम। शब आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को बताया कि कल क्या होने जा रहा है, एक मरतबा उसके बाद जनाब कासिम इब्न हसन आते हैं, इमाम से पूछते हैं कि चचा जान क्या दफ्तर शहादत में मेरा नाम भी है, क्या दफ्तर शहादत में मेरा नाम भी है। हुसैन इस नन्हे से बच्चे को देखते हैं, क्या जवाब दें, ये उसे भाई का यतीम है और एक अजीब सवाल कर रहे हैं। हुसैन जवाब तो जानते हैं ना, लेकिन कैसे जवाब दें इस बच्चे को। आपने एक सवाल पूछा, कहा बेटा ये बताओ कि मौत तुम्हारे नज़दीक क्या की है, कई बार वजह तुबल मौत, तुम मौत को किस तरह पाते हो। और इस नन्हे बच्चे ने जवाब दिया, हैरान कर दिया दुनिया को, कि अहलम मिन असल, कि चचा जान मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। और फकत एक जुमला नहीं है जो आपने कह दिया हो, बल्कि दूसरे दिन अमल करके दिखाया कि जो कुछ उन्होंने फरमाया था वो दिल से फरमाया, कि बार बार आते हैं इजाज़त तलब करते हैं, हुसैन बार बार मना करते हैं, यहाँ तक कि एक मरतबा सिफारिश अपनी वालदा की लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद हुसैन रुखसती की इजाज़त तो देते हैं जनाब कासिम को, लेकिन कर्बला के वो रोज़ आशूरा के वो चंद मकामात, चंद मनाजिर हैं कि जिसमें हुसैन अलैहिस्सलाम फूट फूट के रोए, उनमें से एक मंजर वो है कि जब जनाब कासिम का मैदान की तरफ रुखसत करने लगे तो चचा ने यतीम भतीजे को कलेजे से लगाया और हुसैन फूट फूट के रोने लगे। और उसके बाद एक मरतबा कासिम मैदान में आते हैं, मर्दाना वार मुकाबला करते हैं और ऐसा मुकाबला करते हैं कि अर्दक शामी अपने एक बेटे को भेजता है, उसको फिनार कर देते हैं, दूसरे को भेजता है, बाद रिवायतों में है तो उसने अपने चार बेटों को भेजा और जब चारों फिनार हो गए, एक मरतबा गैस में आकर खुद मुकाबले पर आता है। हुसैन कहते हैं कि हाशमी बेजवान है, ऐसा ना हो एक के मुकाबले में एक को शिकस्त हो जाए, बरेला इसकी मदद फरमा। और जनाब कासिम इब्न हसन एक मरतबा हजरत शामी को भी फिनार कर देते हैं। अब तो तहलका मच जाता है, हर तरफ से लश्कर अलगार कर देता है और हसन का ये जान, हसन का ये यतीम शाम के बादलों में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ बुलंद होती है कि चचा जान मेरी मदद को आइए। एक मरतबा हुसैन रवायत के अल्फाज इस तरह हैं कि इमाम हुसैन उकाब की तरह झपटते हैं और एक मरतबा आगे बढ़ते हैं। जनाब कासिम ने वो शख्स जिसने आपके ऊपर हमला किया था उसको पकड़ लेते हैं, इमाम हुसैन जाकर उसको फिनार करते हैं, इमाम फिनार तो कर देते हैं, लेकिन इसी रस्ता में इधर का लश्कर उधर और उधर का लश्कर इधर होता है। और इसी दौरान जनाब कासिम इब्न हसन एक मरतबा घोड़ों के सूंड के तले पामाल हो जाते हैं और एक मरतबा हुसैन ये फरमाते हैं कि बेटा तेरे चचा पे अफसोस है कि जब तूने उसको पुकारा तो वो हाजिर ना हो सका और जब वो आया तो तेरी मदद के काबिल ना रहा। अल्लाह अकबर, मेरे अर्ज के तहत जो जुमले सिर्फ अर्ज कर लूँ,
दो जुमले और आप सुन लें, इमाम हसन के उस दूसरे फर्जंद के बारे में जो खेमे में मौजूद था, और आखिरी वक्त में जब सैयदुश्शोहदा के कातिल उनके सर पे पहुंच गए और कत्ल करना चाहते थे, ये बच्चा किसी तरह खेमे से बाहर निकल गया। बाहर निकल के एक मरतबा अपने चाचा की तरफ दौड़ा और जैसे ही करीब पहुंचा उसने देखा एक जालिम हुसैन पर तलवार से हमला करना चाहता है। इस नन्हे बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ा के रोकने की कोशिश की, वो तलवार चली और उसके बाद इस बच्चे का हाथ कटा हो गया। जब हाथ कट गया तो एक मरतबा बच्चे ने अपने चाचा से कहा, चाचा जान देखिए मेरा हाथ कट गया। और उसके बाद खेमे की तरफ उठ करके कह रहे हैं, मादर गिरामी देखिए आपके बेटे का हाथ कट गया। अभी ये बातें हो रही थी, हुसैन ने एक मरतबा बच्चे को कलेजे से लगाना चाहा, लेकिन एक ऐसा तीर आया जो बच्चे को छेदता हुआ चला गया और हसन का ये मज़लूम लाल एक मरतबा करबला के मैदान में शहीद हो गया। अल्लाह लानतुल्लाह अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بَارِكَ اللَّهُ فِي سَيِّدِكُمْ بَارِكَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ ہم نے قرآن کریم اور سیرت مرسلین کے مطابق اپنے زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں نے عزیز کو ایمان کی غلط سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان تقویٰ اور اطاعت کو فروغ عطا فرما، حضرت عیسی علیہ الشہدا جہاں جہاں اور یہ زکاری اور زکاری سے رشتہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، بار اللہ اس میں زمین پر بے انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آپ کو جس کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کی ماں اس خان کے انصار عوام سے قرار دے، اور بنا پاؤ میں نئے نقاب کا سم علیم برحمت کے